تفسير ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك پھر بے شک پروردگار تیرا پھر بے شک رب تیرا انم یقیناً بے شک یقیناً رب تیرا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی. پہلی خوبی کیا ہونی چاہیے ان کے اندر؟ ہجرت. اور ہجرت کیوں کی؟ من بعد ما فتنو, ایمان لانے کے بعد جب وہ ستائے گئے, جب وہ آزمائے گئے, جب وہ فتنوں میں ڈالے گئے, پھر کیا کیا میں نے؟ ثم جاہدوا, پھر انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا, کوشش کی, انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کی. وصبروا, اور صبر سے کام لیا. بے شک تیرا پروردگار ایسے لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے. تو اس آیت میں مومنین کی تین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے, ہجرت, جہاد اور صبر. اور ہجرت, جہاد اور صبر, یہ خوبیاں انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب وہ ایمان لاتے ہیں, ہے نا. مطمئن بالایمان, آپ پڑھی چکی پچھلی آیتوں میں کہ وہ لوگ ایمان پر مطمئن ہو گئے. وہ لوگ حیات طیبہ جو تھی اس پر راضی ہو گئے, اور ان لوگوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا. تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی, اور ہجرت کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت سے صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی. آپ کو وہ بھی پتا ہے کہ 4 یا 5 نبوت میں جو ہے تقریباً 80 کے قریب صحابہ, 82-83 صحابہ نے جو ہے وہ مدینہ کی, حبشہ کی طرف ہجرت کی, ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صحابہ نے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ ہجرت کا سفر کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے. ہجرت کیا ہے؟ آپ نے ہجرت والی حدیث بھی تو یاد کی ہے نا. ہاں ہاں, تو سنائیں, آپ میں سے کون سنا رہا
ہے؟
کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ کہ المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عن, مہاجر وہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, سلامتی کا اعلان کرنے والا. تو آپ دیکھیں کہ آپ سیرت بھی پڑھ رہی ہیں آج کل, اور ہجرت کا جو سفر ہے اس میں بہت سے صحابہ کے ہمیں نام ملتے ہیں, جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صرف ایک عمر فاروق ہی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی, گلے میں تلوار لٹکائی, پہلو میں نیزہ باندھا, پشت سے تیر لگائے, ہاتھوں میں کمان لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے. تمام دشمن اسلام جو تھے وہ اپنی اپنی بیٹھکوں میں اپنے اپنے قبائل کے ساتھ تھے. انہوں نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا, پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کی, پھر محفل میں کھڑے ہو کر, جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کی محفل میں کھڑے ہو کر کہا, تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں, اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے, جو شخص چاہتا ہے اپنے پیچھے اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑے, اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچوں کو یتیم کہلوائے, تو آئے اور حرم کے باہر مجھ سے جنگ کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قریش میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کا تعاقب کرے. البتہ کچھ کمزور مسلمان آپ کے ساتھ آ ملے اور سفر ہجرت کے ساتھی بن گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 20 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ جو تھے وہ سفر میں شامل ہو گئے. تو ایک تو یہ ہجرت تھی, اور دوسری آپ نے حضرت ام سلمہ ابو سلمہ والی بھی آپ نے سنی کہ انہوں نے ہجرت کی تو کیسے کی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کیسی تھی, ہے نا؟ یہ مکہ چھوڑنے والوں میں آخری مہاجر تھے, اور یہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو پتہ ہے اہل مکہ نے کیا کہا تھا کہ اے صہیب رومی, جب تم مکہ میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے, مفلس, محتاج, اور اب تم دولت مند ہو گئے تو دولت لے کر تم مکہ سے نکل نہیں سکتے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا کہ اے گروہ قریش, تمہیں میرا مال و دولت مبارک اور مجھے ہجرت کا سفر مبارک, ہے نا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پتا چلا تھا ان کی ہجرت کا حال تو آپ نے کہا تھا ابو یحییٰ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا. اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ ہی چکی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں, کہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر جو تھے وہ نکل کھڑے ہوئے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ابو سفیان کی ایک بیٹی فرع, فارعین, فرع جو تھی, ان کی شادی حضرت ابو احمد بن جہش سے ہوئی بھی تھی. تو ابو سفیان کے پھر وہ داماد بن گئے. تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ داماد کے خاندان کے سارے گھروں پر قبضہ کر لیا. جب حضور سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اس گھر کے بدلے جنت میں گھر ملنے پر راضی نہیں؟ اور فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو احمد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا دعویٰ جو ہے وہ پیش کیا تو فاتح مکہ نے خاموشی اختیار کر لی. فاتح مکہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہیں چاہتے تھے کہ راہ خدا میں چھوڑا ہوا مال جو ہے اس کو لٹایا جائے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ کے گھر پہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان ربک للذین ہاجروا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کیوں کی؟ من بعد ما فتنوا, کے بعد اس کے کہ وہ آزمائے گئے, وہ ستائے گئے. فتن, کھوٹ پرک کو دور کرنے کے لیے لوہے کو اس کو سونے کو بھی پگھلایا جاتا ہے نا. فتن, فتنوا. پھر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کچھ مسلمان جو ہیں وہ آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں, اور کوئی آزمائشیں دکھ کی ہوتی ہیں, کوئی سکھ کی ہوتی ہیں, اور کوئی سب کو پتا ہوتا ہے, اور کچھ ایسے آزمائشیں ہوتی ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, اسی کو پتا ہوتا ہے جس جو وہ آزمائش میں ہوتا ہے نا. تو ان کو, ان کے لیے بھی یہاں پہ خوشخبری ہے. دوسری بات کیا ہے کہ انہوں نے کوشش کی, جہاد کیا, اور آپ کو پتا ہے جیم ہا دال انتہائی کوشش کو کہتے ہیں, چومکھی لڑائی لڑنا, دائیں بائیں, اوپر نیچے, آگے پیچھے, اور یہ جو جہاد ہے انتہائی کوشش, یہ کیا ہے انتہائی کوشش؟ اس کو کہتے ہیں کہ ہر لمحے, منٹ کے ہر لمحے, گھنٹے کے ہر منٹ, دن کے ہر گھنٹے میں, مہینے کے ہر دن, اور سال کے ہر مہینے, اور زندگی کے ہر سال, اور اس میں ہر وقت, ہر جگہ, ہر مقام پر. مال میں چلے گئے تو بھی سوچ رہے ہیں کہ لباس وہ اچھا لگ رہا ہے جو دنیا پہنتی ہے, لیکن ستر کا خیال رکھنا, میرے پاس پیسے کتنے ہیں, اپنے جو پاکٹ منی ہے اس کا خیال رکھنا, گھر والوں کا خیال رکھنا, اور پھر ہم شاپنگ کریں. اسی طرح سے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اپنے ہی گھر میں ہیں, لیکن خیال آتا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق ہیں, تھکن ہے, لیکن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمسایوں کی ذرا خبر تو لے لیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں پوچھتے, وہ نہیں بتاتے, وہ نہیں ملتے, وہ نہیں فون کرتے, لیکن جو ہے وہ مجھے تو جنت چاہیے نا. اسی طرح رشتے دار جو ہیں وہ حسن سلوک نہیں کرتے, लेकिन हमें उनके साथ सिला रहमी करनी है। क्यों? कि सुम्मा जाहदू, फिर साथ इसके जिहाद करते हैं। अब ये नहीं कि हिजरत करके और खुश हो जाएं कि हिजरत कर ली, कि भाई हमने तो इतना हम काम किए, नहीं। सुम्मा, सुम्मा एक पूरी कहानी बताता है, फिर वो जिहाद करते रहे, फिर वो कोशिशें करते रहे, यहां तक कि मौत आ जाए ना, मुसलसल सारी जिंदगी। और तीसरी बात क्या है? वसबारू, और ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो के सबर करते हैं। और सबर जो है इसके क्या मानी है? कि रुक जाना, डट जाना, जम जाना, बर्दाश्त करना, अल्लाह के रास्ते में जो जो भी तकलीफें आए उनको बर्दाश्त करना, ये वो खुशकिस्मत हैं जो के सबर करने वाले हैं। और इस सिलसिले में आप देखें कि हजरत यासिर और इनकी बीवी जो थी हजरत सुमैया रजी अल्लाह अनहा और रजी अल्लाह अनहो, काफिर इनको मारते पीटते थे और चाहते थे कि वो दीन को छोड़ देना। हजरत यासिर रजी अल्लाह को कत्ल कर दिया गया और हजरत सुमैया रजी अल्लाह अनहा को दो ऊंटों के दरमियान बांध कर दौड़ाया गया, जिससे उनके दो टुकड़े अलग अलग होकर वो शहीद हुई। और यही वो दो बुजुर्ग हैं जिनको इस्लाम की खातिर कहते हैं सबसे पहले शहादत नसीब हुई। अपने माँ बाप को इतने जुल्म और सितम से जब शहीद होते देखा, तो वो कौन थे जिन्होंने शहीद होते देखा? हजरत अम्मार, हजरत अम्मार, अम्मार बिन यासिर, है ना। तो ये वो बात थी कि जिन्होंने फिर वो रुख्सत से फायदा उठाते हुए जो जो है वो जबानी कुफर का इकरार किया था, लेकिन दिल ईमान पर मुतमिन था, और पिछली आयतें जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थी वो उनको पढ़कर सुनाई थी। तो ये है कि वसबारू, और सबर करना। और सबर जो होता है ना, तीन किस्म का होता है। एक जो है जब गुनाह करने को दिल चाहे ना तो सबर करना, गीबत करने को दिल मचल रहा है, उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि दो चार मैं भी जरा जुमले बोलूं, जरा मैं भी उसको बदनाम करूं, बहुत दिल चाह रहा है गीबत करने को, बहुत दिल चाह रहा है फैशन करने को जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेके जाता है, बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी जो है वो कुछ झूठ बोलूं और कीना कदूरत रखूं दिल में और नफरतें करूं मैं भी, लेकिन सबर है ना। तो एक सबर कौन सा होता है? गुनाह करने को दिल चाहे तो इंसान सबर करे। दूसरा सबर क्या होता है? नेकी करने के लिए सबर करना। नमाज पढ़नी है, फर्ज है, क्लास से आप गए हैं और बाहर सफर से कहीं से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, लेकिन नमाज पढ़नी है, सबर करना है ना, हलाल ही पर राजी हो जाना, सबर करना। और तीसरा सबर जो बहुत आम है, जो कि तकलीफें मुसीबतें परेशानियां आए तो उन पर सबर करना। फसबरू इन्ना रब्बा का, बेशक परवरदिगार तेरा, निम्बादिहा, इसके बाद, किसके बाद? हिजरत, जिहाद और सबर के बाद, बेशक परवरदिगार तेरा इन वो लोग जो ये सिफात इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है? लगफूर रहीम, अलबत्ता बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो आप देख लीजिए कि लोग क्या कहते हैं, गीबत कर लो अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ कर देगा, चुगली कर लो अल्लाह तो बख्शने वाला है, नमाजें कजा कर लो कोई बात नहीं अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह तो रहमतुल्लिल आलमीन है, गीबत कर लो, चुगली कर लो, डाका डाल लो, चोरी कर लो, जिना कर लो, लोगों के हकूक मारो, उनके साथ उसने सलूक ना करो, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जब भी गफूर रहीम का जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर उनसे कोई कोताही हो भी जाए तो हिजरत, जिहाद और सबर, ईमान लाने के बाद इंसान से अगर गलती हो जाती है, लेकिन हिजरत, जिहाद और सबर ये वो खूबियां हैं कि वो गुनाहों को माफ करवा देती हैं। अल्लाह ऐसे लोगों के लिए बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैं ऐसे लोगों को बख्शूंगा और उन पर रहम करूंगा, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा जो कि सबर करते हैं, जो कि हिजरत करते हैं, जो कि नेकियां करते हैं। फिर ऐलान कर रहे हैं अल्लाह ताला कि कयामत का दिन कितना सख्त होगा, यौम तअति कुल्लु नफ्सिन, जिस दिन हर नफ्स आएगा इस हाल में, हाल क्या होगा? तुजादिलू अन नफ्सिहा, कि अपने नफ्स की के बारे में झगड़ा कर रहा होगा, उसको सिर्फ अपने नफ्स की फिक्र होगी, अपनी अपनी जान की फिक्र होगी। अब आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये कह रहे हैं कि वो दिन जो इतना सख्त होगा कि वो लोग जो अल्लाह के दरबार में आएंगे, जो अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी। सूरत अबासा में भी क्या है, लिकुल लिम्रिम मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युग्नी, है ना। तो उस दिन बाप भाई बेटा बीवी बच्चे कोई भी एक दूसरे को नहीं पूछेगा, सब एक दूसरे से भागेंगे। हर शख्स ये चाहेगा कि किसी तरह मैं जो है वो अल्लाह की पकड़ से बच जाऊं। उस दिन ना कोई बोलना भी पसंद नहीं करेगा, छुपता फिरेगा, बचता फिरेगा कि कैसे मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं। आप देखें कि दुनिया में आम दिनों में लोग तैयारी करवा रहे होते हैं, इम्तहान की कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन पेपर होता है कहते हैं भाई आज तो अपना अपना पढ़ो, तो बिल्कुल ही आखिरी टाइम आ गया है ना। हत्ता के घर में दो तीन बहन भाइयों का भी पेपर हो ना, तो हर बच्चा ये कहता है कि अम्मी भी कहे ना बेटा थोड़ी सी भाई की या बहन की मदद कर दो, तो कहते हैं अम्मी मेरा तो अपना पेपर है, मेरा तो अपना प्रोजेक्ट है, मेरी तो अपना थीसिस है, मैं कैसे किसकी मदद करूं, मैं नहीं कर सकता इस वक्त, मैं नहीं कर सकती इस वक्त ना। सही है ना। तो जिंदगी में भी दुनिया में भी बहुत से ऐसे औकात आते हैं, ऐसे लम्हे आते हैं कि कोई किसी की जो है वो मदद नहीं करता। तो यहां से फिर ये बात पता चलती है कि हम में से जिसने भी जो कुछ भी करना है तो दुनिया ही में तैयारी करनी है, वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। दुनिया में तो वकील बना लेते हैं ना, किसी को पैसे देकर फलां को वकील बनाए, इतने ही उसने केस जीते हैं, लेकिन वहां कोई किसी की वकालत नहीं कर सकेगा, कोई किसी का सिफारशी नहीं होगा, क्योंकि मुकम्मल अदल और इंसाफ जो है वो किया जाएगा। तो ये आयत जो है वो आखिरत की याद दहानी करवाती है। अल्लाह ताला कहते हैं वतुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, तुवफ्फा वफा की जाएगी हर नफ्स के साथ जो कुछ उसने किया, वहुम ला युज़लमून, और किसी पर जर्रा बराबर जुल्म जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये जो है ना गफूर रहीम वाली आयत ऊपर वाली, और ये दोनों का आपस में लिंक है। तो फिर कौन से लोग हैं जिनकी अल्लाह खताओं से दरगुजर करेगा, किन लोगों की अल्लाह लग्जिशों को माफ कर देगा? ये वो लोग होंगे जो मुहाजरीन थे, जो मुजाहिदीन थे, जो साबरीन थे। दुनिया की जिंदगी में जो है वो मेहनत मुशक्कत और कोशिशें जो थे वो करते रहे। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वदरब अल्लाहु मसलन करियतन, दी मिसाल अल्लाह ने एक बस्ती की, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है। आपको पता है ना दरब आप ऐसे मारने को कहते हैं, और कभी ये चलने के लिए भी आता है। तो कभी होता है ना कि आप जैसे कोई बात करते हैं तो जैसे कि किसी को कुछ मार देते हैं, उसके मुंह पर एक बात रख दी, है ना। तो जमीन पर चलने के लिए भी दरब आता है, कोई बात जो है वो करना, कोई मिसाल देकर किसी को बात समझाना, तो वो भी वहां पे भी आता है। वह दरब अल्लाहु मसलन करियतन, और मिसाल दी अल्लाह ने एक बस्ती की। तो मसलन करियतन क्या है, ये मुरक्कबे तौसीफी है, सिफ्त और मौसूफ। मिसाल एक बस्ती की, ये बस्ती कौन सी थी और ये बस्ती किस हाल में थी? कहा कि बस्ती का हाल ये था, कानत वो थी आमिनतम मुतमइन्नतन, मुतमइन और अमन के साथ, बेखौफ नडर चैन के साथ वो बस्ती जो थी वो रहती थी। चैन का हाल क्या था, यातिया रिस्कुहा, आता था इसके पास रिस्क, रिस्कुहा इसका रिस्क, रगतन खुला बा फरागत, खूब वसी, खूब अच्छी तरह, बहुत नेमत होने के माने में आता है ना, मिन कुल्ले मकान, इन हर मकान से, हर तरफ से, हर तरफ से इस बस्ती पर जो है वो अल्लाह ताला के अता करदा रिज की जो थी वो बारिश हो रही थी। फकफरत, फिर इसने कुफर किया, फिर इसने इनकार किया नेमतों जो आ रही थी इसके पास, उसकी ना शुक्री की भी अनोमिल्लाही साथ अल्लाह की नेमतों के जो अल्लाह ने नेमतें इसको अता कर रखी थी। फाजा कहल्लाहु, बस चखा दिया इसको, हाँ की जमीर बस्ती के लिए है, फिर चखाया अल्लाह ने इसको, इस बस्ती को, लिबास अल जू, भूख का लिबास, वल खौफी और खौफ का लिबास। और मुफस्सरीन तो ये भी कहते हैं कि लिबास अल जू जो है इसके साथ ही असल में जो है वो लिबास अल खौफ भी है। तो अरबी का कायदा क्या है कि बाज़ औक़ात जो आला अरबी का उसूल होता है या उसलूब होता है तो उसके मुताबिक कुछ अगली बात को हजफ भी कर दिया जाता है, क्योंकि लिबास अल जूई व लिबास अल खौफी, इसकी बजाय लिबास अल जूई वल खौफी, तो लिबास दोनों जगह आएगा। तो अल्लाह ताला ने इस बस्ती को इनके अमलों की वजह से भूख और खौफ का लिबास, उसकी मुसीबत इनको चखाई, पहनाया, बिमा कानू यसनाउन, जो वो अमल करते थे। इसके बारे में मुफस्सरीन की राय ये है कि यूं तो हमें कोई निशानदेही नहीं मिलती कि ये बस्ती कौन सी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल है, वो ये कहते हैं कि यहाँ मक्का को नाम लिए बगैर उसकी मिसाल दी गई है। और अहले मक्का जो थे इन पर अल्लाह की तरफ से जो है वो क्या था कि खौफ और भूख की मुसीबत इन पर जो थी वो छा गई थी। मक्का वाले बड़े अमनो चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे अरब में, लेकिन लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म रहता था। अहले मक्का कत्लो गारत के दौर में भी हरम की वजह से सारे लोग जो अरब के थे ना, अहले मक्का का एहतराम करते थे, ये अमन था उनको। इनके तजारती काफले जो थे उन पर किसी को हमला करने की जरूरत नहीं होती थी। और जिस तजारती काफले को ये कुरैशी मक्का जो थे वो परवाना राहदारी दे देते थे ना, रास्ते के लिए एक परमिट देते थे कि ये काफला आराम से गुजर जाए, तो वो अमनो अमान से गुजरता था, रास्ते वाले भी उनको कोई तंग नहीं करते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और दुनिया भर से फल और खाने पीने की चीजें हर तरफ से मक्का में पहुंच जाती थी। रब्बी जल हाजल बलद आमिना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना कि इस बस्ती को अमन की बस्ती बना और इसके रहने वालों को खूब समरात दे, रिस्क दे। हालांकि वहां पे कोई ना फलदार दरख्त था और ना ही वहां पे कोई गल्ला वगैरह था, ना कोई मवेशियों के लिए कोई सब्जा कोई चारा था, लेकिन फिर भी जो है वो हर तरफ से फल भी उनके पास हर तरह का होता था और अमनो अमान भी उनको मिलता था, तिजारत भी उनकी बड़े उरूजों पर थी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो अहले मक्का ने क्या किया कि आपका इनकार किया, तौहीद का इनकार किया और मुसलमानों के जानी दुश्मन बन गए, तो अल्लाह ने अपनी नेमतें इनसे छीन ली, इन पर कहत का अजाब भेजा और ये कहत 7 साल तक इन पर रहा। बाहर से कोई चीज खाने के लिए नहीं आती थी, इन लोगों का हाल ये हो गया था कि मुर्दा जानवरों के चमड़े और हड्डियां तक खाने पर मजबूर हो गए। जिस्मानी कमजोरी और भूख की शिद्दत का यह हाल था कि अगर आसमान की तरफ निगाह उठाते थे तो उन्हें धुआं ही धुआं नजर आता था, हालांकि मतला साफ होता था। और भूख की वजह से कुछ लोग तो मर भी गए और जो बाकी थे उन्हें भी ये धड़का लगा रहता था कि पता नहीं कितना अरसा जो है हम जिंदा रहेंगे। और फिर इन्होंने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दरख्वास्त की थी कि आप जो है वो अल्लाह ताला से हमारे लिए जो है वो दुआ करें, और अल्लाह ताला ने जो है वो फिर आपकी दुआ को जो कबूल किया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं अबू सुफियान जो था वो के काफिर था, लेकिन वो रसूल अल्लाह के पास आया और आपसे सिला रहमी अफो दरगुजर की दरख्वास्त की, कहा कि आप तो दूसरों को सिला रहमी और अफो दरगुजर की तलकीन करते हैं, आपकी कौम मरती जा रही है, अल्लाह से दुआ करें ये कहर दूर हो जाए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और ये कहर जो है वो दूर हो गया। इसी तरह जो है वो एक राय ये भी है कि करिया दरअसल मरकजी बस्ती को कहते हैं, और ऐसी बस्ती जिसके साथ इर्द गिर्द के भी कुछ कुछ छोटे छोटे इलाके भी उसके साथ मिले हुए हों। तो बाज लोग कहते हैं कि यहाँ इशारा मलका सबा जो है ना उसकी बस्ती की तरफ है। मलका सबा जिस कौम सबा से ताल्लुक रखती थी ना, कौम सबा की तरफ है। और अहले मक्का के सामने इस बस्ती की कई दफा कुरान में मिसाल आई है। जैसे सूरत सबा को भी आप पढ़ें, आयतें 15 से लेकर 20 तक, कि इस बस्ती पर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया हुआ था और बागात थे, बागों की कितारे थी, नहरें थी, चश्मे थे, आबशारे थी। और कहते हैं कि ऐसे बाग थे, बागों की कितारे थी और इतना फल था कि अगर कोई एक शख्स अपनी टोकरी लेकर बाग के अंदर जाता था ना और गुजरता था, तोड़ता भी नहीं था, तो गिर गिर के उसकी टोकरी भर जाती थी। और इंसान दाएं देखता था तो बागों की कितारे, बाएं देखता था तो बागों की कितारे, जैसे कि शीशे में दूसरी तरफ भी नजर आ रहे होते हैं ना, इतना अल्लाह ताला ने इनको जो है वो नवाजा हुआ था। तो इस कौम ने भी क्या किया था कि अल्लाह की नशुक्री की, अल्लाह की नियमतों की नाकदरी की, तो अल्लाह का अजाब आया और एक सैलाब आया और सैलाब ने इस कौम को तबाह करके रख दिया। तो मक्का की बस्ती हो सकती है, कौमे सबा हो सकती है, कोई भी बस्ती हो सकती है। और बस्ती के पास दो खूबियां खास तौर पे थी, दो अल्लाह की नियमतें खास तौर पे थी, एक अमनो सुकून और दूसरा रिज्क की फरावानी। और जब इस कौम ने गुनाह किया, और गुनाह क्या था, फकफारत नशुक्री, तो अल्लाह ने क्या किया कि जब उस कौम ने बिअन उमिल्लाही अल्लाह की नीमतों की नशुक्री की, ये उनका गुनाह था, तो अल्लाह ने उन पर भूख और खौफ का लिबास चढ़ा दिया। लिबास चढ़ा देना, इससे क्या मुराद है कि उस पर जो है वो लिबास ही चढ़ा दिया जाए? हाँ बिल्कुल सही, जैसे लिबास जो है वो चारों तरफ से इंसान को समेट लेता है, लपेट लेता है, इंसान को छुपा लेता है। तो इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर जो है वो भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। गोया के इनको देखते थे ना तो ऐसा लगता था कि खौफ है, खौफ का लिबास पहना है, खौफ ज्यादा ये रहते थे। देखते थे तो भूख ही भूख इनके चेहरों से, इनके जिस्मों से जो थी वो नजर आती थी। जैसे कोई शख्स इतना भूखा हो कि देखकर आप उसको कहें कि वो तो वहां तो भूख ही भूख है उनके घर के अंदर। हाँ जैसे इथोपिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, और बाज ममालिक जहाँ पे कहत, सैलाब, आए दिन आफतें आसमानी जब आती रहती हैं, तो वहां के लोगों को आप देखें कि लगता है कि कहते हैं ना कि भूख का राज है, खौफ का राज है। तो ये है इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने भूख और खौफ की मुसीबतें जो थी वो इन पर हर तरफ से जो थी वो नाजिल कर दी, वो इनके ऊपर छा गई। और ऐसा हुआ क्यों? विमा कानू यसनऊन, जो वो अमल करते थे। तो असल बात क्या है, उनके अमलों की वजह से है ना, उनके अमाल ऐसे थे जिसकी वजह से जू और खौफ का अजाब इन्हें मिला। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है, इंफरादी सतह पर या इज्तमाई सतह पर। कोई फर्द या कोई कौम अल्लाह की नेमतें तो इस्तेमाल करे लेकिन शुक्रगुजार ना हो। जब फर्द या कौम नशुक्री की रविश इख्तियार करती है तो अल्लाह फिर उनसे अपनी नेमतें जो है वो छीन लेता है। तो मुसलमानों को बताया जा रहा है कि मुसलमानों तुम सोचो तो सही, कुफराने नेमत इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके बदले में अल्लाह अपनी नेमतें छीनता है और फिर मुजरिमों पर अजाब नाजिल कर देता है, अजाब मुसल्लत कर देता है। तो पीछे जिक्र हुआ ईमान, हिजरत, जिहाद, सबर, और अब फिर पैगाम दिया जा रहा है शुक्रगुजारी का। और सूरत नहल तो है ही, सूरत नहल नेमतों वाली सूरत, इसका दूसरा नाम क्या था?
नेमा।
सूरत नेमा, ऐसी सूरत जो नेमतों वाली सूरत है ना। तो यहाँ पे भी अन ओ मिल्ला अहम बात है कि अल्लाह की जितनी नेमतें हैं जो अल्लाह ने अता कर रखी हैं, उनका जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र गुजार बनना चाहिए। मैं अक्सर इस बात से सोचती हूँ कि हम अगर कोई एक रुमाल दे देना अगर कोई अपने पानी का गिलास दे दे, आप खड़े हुए, आपको कुर्सी ही ला कर दे दे, आपके दिल में एक इज्जत पैदा होती है ना, है ना, और आप उसके मशकूर होते हैं और आप थैंक यू और थैंक यू वेरी मच और थैंक्स, और आप सोचते हैं कि कैसे जो है मैं इसका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन हम अपने जैसे इंसान के लिए तो इतने मशकूर होते हैं, और वो रब जो कि सब इंसानों से बढ़कर नेमते देने वाला है, जो मुन हमें हकीकी है, जो नेमतों से हमें माला माल कर देता है, जिसका एहसान है कि हम आज भी दुनिया में जी रहे हैं, इतनी नशुक्री, इतना कुफर, इतने गुनाह, इतनी नाफरमानियां करने के बाद आज भी हम इस जमीन पर उसने हमें जीने का जो हक अता किया है, हम उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करते। केला खाते हैं, छिलके फेंक देते हैं, है ना, केला खाते हैं, छिलके फेंक देते हैं ना, कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने वो फल दिया है कि ऊपर से उसके ऊपर लिबास है, खुद अपने हाथ से केले के लिबास को हम उतारते हैं और अंदर से फ्रेश साफ सुथरा फल हमें नसीब होता है। आम को आप देख लें, है ना, आप उस अंगूरों को देख लें, आप खजूरों को देख लें, आप जो है वो इसको माल्टों को देख लें, अमरूदों को देख लें, आप तरबूज को देख लें, है ना, तरबूज को देख लें। जैसे तो कोई आदमी जा रहा था ना, तो कहने लगा मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने ये तरबूज नीचे क्यों लगाया, ऊपर क्यों नहीं लगाए, तो कहते हैं आगे थोड़ा सा गया तो उसके सर पर कोई ऊपर से फल आकर गिरा, वो आम था या माल्टा या सेब, जो भी ऊपर से जब गिरा ना, तो जब जोर से लगा तो उसको दर्द, उसने कहा शुक्र है या अल्लाह यहाँ ये सेब ही था, ये तरबूज नहीं था, अगर तरबूज होता तो आज मेरा क्या होता। तो हर चीज में अल्लाह की में एक हिकमत है जो अल्लाह ने अता कर रखी है, किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा, किसी को खूबसूरत, किसी को बदसूरत, किसी को लंबा, किसी को छोटा घर दिया, किसी को बड़ा घर दिया। हर हाल में ना, हमेशा हर हाल में हमें ना खैर ढूंढनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करने वाले थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखें, सब्र जमील, है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें कि कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा रखा है ना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखें, यहया अलैहिस्सलाम को देखें, इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि यतीमी भी थी और कितने गम के पहाड़, बेटा भी कोई जिंदा ना रहा, जाहरी तौर पर देखें कोई बहुत अमारत की जिंदगी बसर नहीं की, कनात खजूर कि वो छाल थी, पिटाई थी जिस पर लेटे थे, निशान पड़े हुए थे, पानी का मुश्कीज़ा बस लटक रहा था, और उम्र फारूक रजी अल्लाह ने देखकर आपको रोने लगे, कहने लगे कैसरो किसरा के बादशाह दुनिया के मजे लूटे और दो जहां का बादशाह इस हाल में। आपने फरमाया है उम्र तक क्या तुम इस पर राजी नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत, है ना। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात तो मुझे कभी भी नहीं भूलती, मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि एक दफा जब आपके लिए, आप तो तहज्जुद के लिए आपकी आंख नहीं खुली, तो आपने सोचा कि मेरी आज तहज्जुद में आंख क्यों नहीं खुली, और आपने कहा कि ये क्या हुआ, तो पता चला कि अजवाजे मोहतारात में से किसी ने आपका जी जो चादर आपके नीचे बिछाई जाती थी उसको चोहरा कर दिया था, तो नरम हो गया ना, तो कहा कि नहीं उसको कहरा कर दो ना, आज मेरी तहज्जुद के लिए ना आंख नहीं खुली। तो हम क्या करते हैं, खूब ऐसी की ठंडक, खूब गरम नरम बिस्तर, खूब अच्छी सी हीटिंग, खूब अच्छी नेमतें, खाने, कपड़े, जेवरात, अंबार उसके, और नमाज़े फर्ज कजा करते हैं और आंखों में आंसू नहीं आते ना, दिल में चुभन नहीं होती, जितनी सुई के लगने से चुभन हो सकती है ना, कोई कांटा लग जाए तो चुभन, उतनी भी तकलीफ नहीं होती कि नमाज कजा हो गई और क्यों कजा हो गई। और पता है आपको, ये सलफ सालहीन जो थे, ये नेक लोग, अगर उनको पता चलता था ना कि मेरे फलां दोस्त की नमाज कजा हो गई, होती नहीं थी, अगर हो जाए तो दूसरे दोस्त इतना अफसोस करता था कि उसका दूसरा साथी उसके पास ताजियत करने के लिए जाता था, ताजियत। हमारे माथे पे शिकन भी नहीं पड़ती ना। तो असल बात क्या है, फकफरत बिअनअमिल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह की जो नेमतें थी उनके साथ नाशुक्री की। तो हमें भी शुक्रगुजार बनना चाहिए। तो कैसा शुक्रगुजार बने, कम अज कम हम दरख्त को से ही सबक ले लें कि फल लगता है तो झुक जाता है, उस पर छोटे बच्चे भी पत्थर मारते हैं और बड़े भी, उससे छोटे बच्चे भी फल उतार लेते हैं और बड़े भी, है ना। कोई खट्टा कच्चा भी उतारे तो दरख्त कुछ नहीं कहता, छांव के नीचे बैठने देता है सबको, है ना। उसके पत्ते भी जानवर खाते हैं, यानी हर चीज उसकी सारी जिंदगी वो दूसरों की खिदमत करता रहता है, छोटा हो या बड़ा हो। तो हम जो हैं एक दरख्त ही बन जाए एटलीस्ट, कि नेमते मिलने पर झुक जाए, शुक्रगुजार हो, हमारे अंदर अकड़ ना हो, और हमेशा अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें आती हैं ना, बिमा कानु यसनाउन, अपने अमलों की वजह से आती है। और जब भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो उनके अमल क्या थे, क्यों बिमा कानु यसनाउन वो क्या करते थे, फलकद जाअहुम रसूलुम मिनहुम, तहकीक आया उनके पास रसूल उन्हीं में से। मक्का वालों में, मक्का वाले कौन थे, इंसान थे, मिनहुम उनमें से, तो इंसानों ही में से अल्लाह ने एक रसूल को अपना एम्बेसडर बनाकर भेजा। और वो रसूल जो था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो उनके पास दावत लेकर गए तो उन्होंने क्या किया, फकज़बूहू, उन सब ने मिलकर, हु की जमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, कि उन सब ने मिलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दिया, कहा कि ना आप रसूल हैं, ना अल्लाह ने आपको भेजा है, ना कोई किताब आप पर नाजिल हुई है, झुटला दिया। और अफसोस के आज भी रसूल को लोग झुठलाते हैं। अब आप देखें हदीस का इनकार करने वाले मुनकरीन हदीस, फिर ये कि अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि मिन हुम उन में से रसूल भेजा, और लोग कहते हैं कि नहीं रसूल तो नूर थे, वो तो जो है वो नूर थे, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जो है जो रसूल भेजा वो इंसानों ही में से बेशा भेजा, बशर, बशर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन अफसोस कि अहले मक्का ने भी झुठलाया, और आज हमारे मुसलमानों में से भी लोग जो है वो अल्लाह की आयात का इंकार करते हैं, कहते हैं हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन हदीस की जरूरत नहीं है, हम नेकियां तो करना चाहते हैं लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं। उन्होंने उनको झुटलाया तो अल्लाह ने क्या किया, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, आखिरकार उनको पकड़ लिया अजाब ने, उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। और लोगों, अल्लाह का अजाब यूं ही थोड़ी आता है, अल्लाह की पकड़ यूं ही थोड़ी होती है, वजह क्या थी, वहुम ज़ालिमून, और वो जालिम थे। जुल्म से मुराद क्या है, कुफ्र करना, शिर्क करना, नशुकरी करना, इन सब मानी में जुल्म का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि तुम ईमान रखने वाले हो, तुम नेमतों का शुक्र अदा करो, अल्लाह की बंदगी करते रहो, नाफरमानियों को छोड़ दो। और ये भी नाफरमानी है कि इंसान हलाल और हराम की तमीज ना करे, जिसके हलाल की तलाश ना करे, हराम और गंदी चीजों से परहेज ना करे। फरमाया फकुलू मिम्मा रज़क़ाकुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, बस खाओ उसमें से जो रिस्क तुमको अल्लाह ने दिया है, और रिस्क कैसा है, हलालन तय्यिबा, हलाल और पाक। अब आप देख लीजिए कि यहां पर जो है खास तौर पर जो बात कही जा रही है वो क्या है, कि तुम लोग जो हो वो हलाल रिस्क जो है उसका इस्तेमाल करो, हलाल रिस्क जो है वो खाओ, और वो रिस्क हलाल होने के साथ साथ दूसरी उसकी शर्त क्या है कि वो तैयब होना चाहिए, तैयब, पाक, गंदा नहीं हो, हराम नहीं हो, खराब नहीं हो। और साथ ही एक और बात कही, वशकुरु नेमत अल्लाही, और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। क्या मतलब है कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि गोया के कहत फिर उन पर खत्म हो गया और नेमतों की फिर बारिश होने लगी। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो नेमत दे मैं दे रहा हूं, जो रिस्क दे रहा हूं, ये तुम्हारे बुत तो नहीं दे रहे ना, फिर तुम मेरे दिए हुए रिस्क में से कुछ को हलाल कर लेते हो, कुछ को हराम कर लेते हो। और आपको पता है ना कि उन्होंने वो हाम और वसीला, साहिबा, ये सारे बातें की हुई थी ना, जो जानवर थे उनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे ना, तो खुद ही हलाल को वो हराम कर देते। तो कहा कि नहीं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, लेकिन साथ ही शुक्र अदा करने की शर्त क्या बताई, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर हो तुम इसी अल्लाह की इबादत करने वाले। इय्याहु ये कलमाए हसर है, जैसे हम कहते हैं ना इय्याक नाबुदू, हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसके सिवा कुछ और नहीं, बस यही। क्या कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो तो फिर अल्लाह का कहना क्यों नहीं मानते। बंदगी में ये भी तो आता है कि अल्लाह का कहना माना जाए और हलाल जो रिज्क है उसका इस्तेमाल किया जाए। अहले मक्का ये कहते थे कि हम जो हैं हम तो अल्लाह की बंदगी करते हैं, है ना, और हम जो बुतों को मानते हैं तो बुतों को मानने का मकसद क्या है कि मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। वो कहते थे कि हमारा तो ये ख्याल है, अज़ूम ये है, अकीदा ये है कि ये जो हमारे माबूद हैं, बुत हैं, ये अल्लाह के मुकर्रब और चहीते हैं, अगर ये राजी रहेंगे तो अल्लाह भी राजी रहेगा। क्या मकसद था? इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ज़ुल्फ़ करीब को कहते हैं ना, कि ये हमें, ये हमारे परस्तार जो है, यानी हमारे माबूद अपने परस्तारों को अल्लाह के करीब कर देंगे। तो ये वजह थी, और वो इसी वजह से फिर उन बुतों का ना दूध धोते, ना सवारी करते, कुछ भी काम नहीं करते थे, उनसे काम नहीं लेते थे, छोड़ देते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह की बख्शी हुई नेमतों का इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला की बख्शी हुई बख्शा हुआ रिस्क जो है उसको तुम खाओ पियो, और अल्लाह का जो रिस्क है उसको भी तुम खाओ, क्योंकि तुम तो अल्लाह की बंदगी करने वाले हो ना। फिर साथ ही दोबारा कहा कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, इसके सिवा कुछ भी नहीं अल्लाह ने हराम किया। बात सिर्फ यही है कि अल्लाह ने हर्रमा हराम किया है, अलैकुम तुम पर क्या चीजें, चार चीजों का यहां पे जिक्र किया जा रहा है, अल मैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीरी और सुअर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का भी नाम जो है वो लिया जाए। आप देख लीजिए कि ये जो आयत है, ये आयत इससे पहले 3 मरतबा पहले भी गुजर चुकी है। सूरत अल बकरा आयत 173, सूरत अल माईदा आयत नंबर 3, सूरत अल अनाम आयत 145। अब ये चौथी बार अल्लाह ताला कह रहे हैं, और एक ही बात को बार बार कहना उसकी ताकीद का इजहार करता है ना, कि अल्लाह ताला के नजदीक जो है वो बात बहुत ही अहम है, वो बात बहुत ही जरूरी है। अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहते हैं कि चार चीजें हैं जो कि तुम पर हराम है, और आपको पता ही है कि ये चार चीजों में से कि मुर्दार, मुर्दार अल्लाह ताला ने जो हराम किया है, तो आप सूरत माईदा की आयत नंबर 3 में भी उसकी तफसील जो है वो पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह ताला ने जो मुर्दार हराम किया है वो क्या है, कि मुनखनेकतु वल मौकूजतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सुबू इल्लमा जक्कई तुम, है ना। और जहां तक बात है इसकी दम की, वद्दमा खून, और सिर्फ कलेजी जो है वो जायज है, और वैसे खून जो है वो हराम है, इसीलिए जो है वो खून से जो जिबा करने का हमारा मुसलमानों का तरीका है उसमें भी खून रग रग से निचड़ कर आ जाता है ना, और पूरी तरह खून जो है वो अलग हो जाए, और अगर खून कुछ लगा हुआ भी है तो उसको धो लिया जाए। फिर लहमल खिंजीर के सुअर का जो गोश्त है वो भी अल्लाह ताला ने जो है वो हराम किया है, मुसलमानों के लिए ये जायज ही नहीं है कि सुअर का गोश्त जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है, उनको हम छोड़ दें। और ये जो चौथी बात है ना कि वमा ओहिल्ला लिगैरिल्ला, ओहिल्ला का आपको पता ही है ना, पुकारना कैसे, कि हा लाम लाम, अहले मक्का अहले अरब क्या करते थे कि जब चांद जू ही नजर आता था तो दूसरों को पुकार कर कहते थे, इधर आओ देखो ये चांद नजर आ गया। इसीलिए पहली रात के चांद को हिलाल कहा जाता है, पुकारना। जू ही चांद देखते तो पुकारते, एक दूसरे को बुलाते कि ये देखो ये चांद, और पहली रात के चांद को हिलाल कि वो चांद जिसे देखते ही लोग पुकार रहे हैं। तो उसी से ये लफ्ज जो है वो पुकारने के मानी में इस्तेमाल किया जाने लगा कि पुकारा जाए। और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, इसका क्या मतलब है? मसलन जब उसको जिबा किया जाए तो किसी बुत या बुजुर्ग का नाम लिया जाए कि फलां बुत के लिए है और फलां बुजुर्ग के लिए है। मकसद क्या है कि वो मेरा बुजुर्ग या वो बुत जो है वो खुश हो जाए, उसका तकर्रुब लेने के लिए। अब आप देखें कि एक और शक्ल भी है, उसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जिबा तो अल्लाह के नाम पर करते हैं, जिबा तो अल्लाह के नाम पर करते हैं, लेकिन वो जो जानवर होता है उसको किसी बुजुर्ग के नाम नाम पर मौसूम कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं, नामजद कर देते हैं। मसलन वो कहते हैं कि ये बकरा या ये गाय ये फलां पीर की है और 11वीं वाले की है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है, मतलब उनका नाम जो है वो लगा देते हैं, और जिबा बिस्मिल्लाह पढ़कर ही करते हैं। तो कहते हैं कि हमने तो इसको बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है वो जिबा किया है, तो फिर कैसे हराम हो गई? तो बिस्मिल्लाह तो हलाल कर देती है। अब अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ पर कि वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम भी लिया गया हो, गो के अल्लाह का नाम भी लिया है, किसी और का नाम लिया है, तो वो क्या है, ये भी शिर्क हो गया, ये भी हराम है। हर वो जानवर जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए वो हराम है, गो के जिबा करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम ही क्यों ना लिया जाए। तो ये चीज भी जो है ये जायज नहीं है। तो इसी तरह से आप ये बात भी पढ़ चुकी हैं कि अब जो है वो जिबा तो अल्लाह के नाम पर किया, किसी और बुत और पीर का नाम नहीं लिया, लेकिन माजूबी है अल नुसुब, हाँ मुकाम की वजह से है ना। सूरत माईदा में जो है वो ये बात भी हमें पता चलती है, यही सूरत अल माईदा की आयत नंबर 3 में, वमा जुबिहा अलन नुसुबी। तो ये चीज भी जो है ये हराम हो जाती है। तो आप देख लीजिए कि इससे क्या बात पता चलती है कि तमाम वो जानवर अगर लोग उनको जिबा कर भी लें, लेकिन जिबा करते वक्त वो क्या करते हैं कि उसको किसी जगह और पर ले जाते हैं, किसी बुत के बुत का जो मजार, बुत की कोई इस्तेहाना बनाया हुआ है या हाँ मजार वगैरह, या किसी इंसान का वहां पे कोई दफन किया हुआ है, आस्ताने हैं, दरबार है, तो वहां वो जानवर भी फिर हराम हो जाते हैं। तो क्योंकि वहां ले जाकर जिबा करने का मकसद क्या है कि उनकी रजामंदी। एक शख्स ने रसूल अल्लाह से आकर कहा कि मैंने नजर मानी है कि मैं बवाना जगह में अपना ऊंट जिबा करूंगा। आपने पूछा क्या वहां जमाना जाहिलियत के बुतों में कोई बुत था जिसकी परस्तिश की जाती थी? लोगों ने बताया कि नहीं। फिर आपने पूछा वहां उनकी ईदों में से कोई ईद तो नहीं मनाई जाती थी? लोगों ने कहा कि नहीं। फिर आपने साहिल को कहा कि ठीक है तुम अपनी नजर जो है वो पूरी कर लो। तो ये है असल बात। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अगर जो है वो किसी भी आस्ताने पर जाकर कोई जानवर जिबा किया जाए तो वो भी जायज नहीं है, हलाल नहीं है, है ना। बाज लोग क्या करते हैं, गैर आबाद आस्तानों पर जाकर जिबा करते हैं, वो भी जायज नहीं है इस हदीस की रोशनी में, क्योंकि कभी तो था ना। तो इस तरह नजरों नियाज, बाज लोग खाना देते हैं हर जुमेरात को, कहते हैं ये 5वीं का है कि 10वीं का है कि 11वीं का है ना, तो मुख्तलिफ उसको नाम दे देते हैं। तो आप देख लीजिए कि बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा ओहिल्ला लिगैरिल्लाही बिही, कि जिस पर अल्लाह के सिवा कोई और नाम लिया जाए, फमन इस्तुर्रा, और बस जो कोई अगर मजबूर कर हो जाए, जिसको मजबूर ही कर दिया गया हो, वो क्यों मजबूर किया गया? भूख की वजह से, गैर बागिन, उसका ये इरादा नहीं था कि वो शख्स जो है वो क्या करे, गैर बागिन कि वो बगावत करने वाला हो। अगर कोई शख्स जो है वो मजबूर हो जाता है, बहुत भूखा है, बेबस है, غیرہ باغن اس کا ہاں سرکشی کا اس کا ارادہ نہیں ہے، ولا عادن اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہے، نہ تو قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہے، اور نہ ہی اب یہ ہے کہ بھوک ہے، بھوک ایک اب جو کے اندر نہیں آپ حرام کو کھا سکتے، کس میں کھائیں گے؟ مخمصہ، جب مرنے کے قریب ہیں، اور کتنا کھائیں گے؟ جس سے جان بچ سکے، پیٹ بھر کر نہیں کھائیں گے، خوش نہیں ہوں گے کہ لو جی اب تو موقع مل گیا اب تو خوب کھا لے، ہے نا، اتنا جس سے بھوک بس مٹ جائے زندہ رہنے کے قابل، تو یہ ہے اس کا مطلب کہ جو مجبور ہو جائے تو نہ ہی اس کا زیادتی کرنے کا ارادہ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، کہ اگر ایک لقمے سے پیٹ بھر سکتا ہے تو دو لقمے نہیں کھانے چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بس بے شک اللہ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ گویا کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلت اور حرمت اس کا اختیار اگر کوئی اپنے پاس لے لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. کسی چیز کو حلال کرنا، کسی کو حرام کرنا، اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور وہ لوگ جو حلال اور حرام کے سلسلے میں خود اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. فرمایا اگر ایسے لوگوں سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے جو اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں، تو اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لما تصفوا السناتکم الکذبا، اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اور نہ کہہ دیا کرو اس چیز کو جو تصفوا، بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں، کہ کسی چیز کو اپنی زبان سے ایسے نہ کہہ دیا کرو، الکذبا جھوٹ، کہ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو. تمہاری زبانیں یہ جو باتیں کرتی رہتی ہیں نا، اور فوراً جھوٹی باتیں کرنے لگتے ہو، اور وہ جھوٹی بات کیا کہتے ہو؟ ہاذا حلال و ہاذا حرام، کہ یہ ہے حلال اور یہ ہے حرام. یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. اس کی یہاں پہ کیا عملی اصول مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ عملی زندگی میں، عام زندگی میں حلال اور حرام کا اختیار اور حق صرف اللہ کے پاس ہے. کسی دوسرے انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بغیر خدائی سند کے، بغیر اللہ کے حکم کے، وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کہے اور کسی چیز کو حرام قرار کرے. کسی کو حلال کہہ دیا، کسی کو حرام کہہ دیا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ نے کہا ہی نہیں اور وہ خود کہتا جاتا ہے. تو یہ لما تصفو السناتکم الکذب، یہ ایک طرح سے محاورہ ہے کہ تمہاری اپنی زبان کے جھوٹ اور بے بنیاد دعوے ہیں. جو تم کہہ رہے ہو اس سلسلے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور لیکن تم کہہ دیتے ہو کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے نا. تو گویا کہ یہاں پر مسلمانوں کی ایک اہم کمزوری، ان کی ایک اہم غلطی جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے یہ بات مت کہا کرو. سورت الانام کو آپ پڑھیں، سورت نساء کو پڑھیں، سورت مائدہ کو پڑھیں، وہاں پہ اور تفصیلات آپ کو ملیں گی. اور ہماری بھی آج کل بھی آپ دیکھیں لوگوں کی بہت عادت ہے، مثلا اگر کسی ذبیحے کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، باہر پلیٹ لگی ہوئی ہے، سٹیمپ لگی ہوئی ہے، تو بس لوگ پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ جی یہ تو حرام ہے اور یہ تو حلال ہے. آپ کا دل نہیں مانتا، آپ مت کھائیں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ عوام کو پریشان کرتے رہیں. جیسے کوئی بھی ذبیحہ ہے اور وہاں پہ کوئی سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے اور وہ جو کچھ بھی بیچ رہے ہیں اس پر مہر لگی ہوئی ہے، جو بھی قانون ہے اس کے تحت اگر کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے، تو ہمارا کام نہیں ہے کہ سنی سنائی بات کسی کو بھی ہر تھوڑے دنوں کے اندر بغیر تحقیق کے ایک بات جو ہے وہ رومر بن کر، افواہ بن کر عوام میں آ جاتی ہے، عام پبلک بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. आपको अगर कोई ऐसी बात पता चली, आप स्कॉलर्स के पास जाएं, आप मसाजिद इस्लामिक सेंटर्स के पास जाएं, आप उनसे पूछें कि ऐसे मैंने सुना है और आपकी इस बारे में क्या राय है, या आप हमें पता करके तहकीक करके आप बता दें, ठीक है ना। तो बाज़ुकात उस बात की सनद कोई नहीं होती, लेकिन आम पब्लिक के अंदर एक बेचैनी की लहर जो है वो दौड़ जाती है, और बाज़ुकात बाज लोग अपना बिजनेस चमकाने के लिए दूसरे को जो है वो गिराना भी चाहते हैं, है ना। तो लोगों के बहुत से इसमें जो है वो नियतें इरादे हो सकते हैं। हमारी बस क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई दुकान है और उसमें वो आपको कोई अपना वो प्रूफ दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है, लगा हुआ है सर्टिफिकेट, और वहां आके मुआयना होता रहता है और पता चलता है कि हाँ भी ये हलाल दुकान है, हलाल यहाँ पे चीजें मिलती हैं, तो फिर हमें उस पर यकीन करना चाहिए। तो ये खास तौर पर ये बीमारी जो है इसका यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। तो उस जमाने में भी लोग क्या करते थे, जैसे बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम, और इसी तरह बाज जगहों पर जाके चीजों को ज़िबा करते थे अपने जानवरों को, और कहते थे नहीं ये तो हलाल है। अब अल्लाह कह रहा है हराम है, तो अपनी जबानों से कैसे कह सकते हैं कि ये हलाल है। तो आज भी ऐसा किया जाता है, लेकिन अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए, और इन कंट्रीज में जो रहने वाले हैं ना बाहर के ममालिक में, वो तो खूब तवज्जो से पढ़ते हैं कि ये चीज हलाल है कि हराम, और ये कैंडी जायज है कि नाजायज, और ये जो खाने की चीजें हैं जेली या दूसरी सब चीजें, इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। लेकिन अरब कंट्रीज में रहने वाले और मुस्लिम ममालिक में रहने वाले वो पढ़ते भी नहीं है, और बाज़ुकात यहीं से चीजें वहां पे गई हुई होती हैं। वो कहते हैं हम तो अरब में रह रहे थे, हमने तो सोचा ही नहीं था, वो तो हम वहां इस्तेमाल करते रहे। तो आप अपनी आंखों को खोलें, अपने कानों को खोलें, और हर जगह जहां पे भी आप रह रहे हैं आप देखें, और जब पता चल जाए कि हलाल है फिर आप परेशान ना हुआ करें, इल्ला ये कि आपको कोई प्रूफ ना जब तक मिल जाए किसी चीज का। तो ये है कि वला तकूलु लिमा तसिफु अलसनातकुमुल कज़िबा हाजा हलालुम व हाजा हराम। तो गोया के बहुत बातें नहीं करनी चाहिए, और अपने पास से किसी चीज को हलाल और हराम का फतवा नहीं देना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो आप इलाज के लिए कहती हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना, स्पेशलिस्ट के पास जाना है। जब दीन की बात आती है तो हर शख्स उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये जायज है और ये नाजायज है, ये हलाल है और ये हराम है। फिर आप दीन के स्पेशलिस्ट उलमाओं और फतवा देने वालों के पास क्यों नहीं जाते? मेरी अकल ये कहती है कि हाँ ये इस तरह से जो है वो जायज है, और ये पैसे जायज हैं, है ना, बैंक से जमा करवाने के नतीजे में जो पैसे मिल रहे हैं वो हर साल 2 साल के बाद वो जो सेविंग होती है तो वो जायज है। उलमा ये कहते हैं कि वो हराम है, तो आप कैसे कहते हैं कि वो जायज है ना? इसलिए कि वो तो सूद में वो भी शामिल होता है, इसी तरह और भी बहुत सी किस्में। तो मुझे बड़ी हैरत होती है वैसे इस बात पे कि अगर बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूं, आप बीमार हैं, हम आम बंदे की राय नहीं लेते, हम कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर भी नहीं, स्पेशलिस्ट के पास जाना है। जब दीन की बात होती है, मैं खुद राय, आप खुद राय, पब्लिक राय देनी शुरू हो जाती है, फिर दीन के स्कॉलर की राय हमारे लिए मुतबिर क्यों नहीं होती कि फला इमाम ने और फला स्कॉलर ने हमें ये फतवा दिया है और अब उसको जो है वो अहमियत दें, और अपनी राय जो है वो हमें नहीं देनी चाहिए। और वो उलमा जो फतवा देते हैं उन्होंने अपनी जिंदगियां रिसर्च में गुजार दी, उन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान और हदीस को पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी, उनको हक है हासिल कि वो जो है वो फतवा दे, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है कुरान के बारे में, अल्लाह के कलाम के बारे में, अल्लाह के अहकाम के बारे में लोग अपनी राय देने लगते हैं, तो डरना चाहिए। हत्ता के अब हम जो है वो किसी कहीं दर्स ही दे रहे हैं, किसी को कोई बात बता रहे हैं, अब किसी को भूल गया तो कहना चाहिए कि कुरान की आयत जो है उसका मफहूम ये है, अगर एग्जैक्ट आयत याद नहीं, हदीस से ही याद नहीं तो कहना चाहिए हदीस का मफहूम ये है, हदीस का निचोड़ ये है, ताकि मेरी तरफ से कोई भी उसमें इजाफा कमी ना हो जाए। एहतियात का ये आलम होना चाहिए। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये हलाल है और ये हराम है, वो ऐसा क्यों करते हैं? लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि वो अल्लाह पर झूठ बांधें, ताकि वो अल्लाह पर झूठ घड़ें, अपनी मर्जी से हलाल और हराम के वो फैसले करें, और अपनी मर्जी से हलाल और हराम करना ये अल्लाह पर झूठ बांधना है। अच्छा, अगर आपके बारे में कोई कह देता है कि वो आपने ये बात कही और आपने नहीं कही, आपके आपका क्या हाल होता है, गुस्से से क्या हाल होता है? मैंने कहा ही नहीं, है ना, मैंने कहा नहीं, और मुझे किसकी जरूरत हुई कि मुझे वो ऐसा कहे? आपके माँ बाप के बारे में कोई कह दे कि आपकी अम्मी झूठी है, आपके अब्बू झूठे हैं, है ना, आपकी औलाद के बारे में कह दे, शोहर के बारे में कह दे, आपके टीचर के बारे में कह दे, और लोग लड़ने भिड़ने पर उतर आते हैं, तो हमें एक गैरत हमारी जोश करती है ना। तो अल्लाह से हम इतनी मोहब्बत भी नहीं करते जितनी हम अपने वालदैन, बहन भाइयों, उस्ताद, अपनी जात, अपनी औलाद से करते हैं कि अल्लाह के बारे में लोग झूठ गढ़े और फिर हमें हमें गैरत ना आए। अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग भी ऐसा करते हैं, ले तफ्तरू अल्लाहिल कजीब, वो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं, वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। इन अल्लज़ीन यफ्तरूना अल्लाहिल कजीब ला युफ्लिहून, बेशक वो लोग जो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं वो फला नहीं पा सकते। अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले कभी उनको फायदा नहीं होगा, मता उन कलील, थोड़ा सा फायदा है, फायदा तो ये उठा रहे हैं लेकिन कितना कलील, थोड़ा। अगर कोई हलाल को हराम बना लेता है ना, हराम को हलाल कर लेता है, तो वो क्या समझता है? वो फायदा उठाता है लेकिन बहुत थोड़ा फायदा है। मसलन कोई हलाल कहीं से गोश्त मिलता है, लेकिन जो है वो गोश्त बेचने वाला, उसने स्टैंड तो लगाई भी है हलाल की, लेकिन उसने वो अगर हराम को मिक्स कर लेता है, हराम को मिक्स कर लेता है कि मैं सस्ता खरीदूं और महंगा बेचूं क्योंकि हलाल महंगा है, तो वो क्या उसको मिलेगा? मताउन कलील, फायदा तो है, थोड़ा फायदा। वला हुम अज़ाबुन अलीम, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक सजा है। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या है कि वो बजाय समझता है मैं बड़ा अकलमंद हूं, मेरी तिजारत ज्यादा होगी, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसी तरह हराम माल के अंदर, हलाल माल के अंदर जब हराम माल शामिल हो जाता है तो हमें क्या लगता है? हराम माल जब मिलता है तो सोसाइटी क्या सोचती है? जैसे रिश्वत है ना, सूद, गबन, डाका, चोरी, किसी का हक था और किसी ने छीन लिया, पता है कि ये मेरा विरासत का हिस्सा नहीं है, ये दूसरों का बनता है, लेकिन उसको हासिल कर लिया जोर की बिना पर, उसने फायदा हासिल कर भी लिया, उसने घर बना भी लिया, बच्चों को खूब जो है उनका फ्यूचर अच्छा बना लिया, वहां पे तिजारत कर ली, वहां पे फैक्ट्री बना ली, दुनिया में वाह वाह हो भी गई, मताउन कलील, वो थोड़ा फायदा है। ये दुनिया का ऐश चंद रोजा है। अल्लाह ताला दुनिया पूरी की पूरी दुनिया को कहते हैं मताउन कलील, और अगर कोई जो है वो हकदार को उसका हक नहीं देता, या हलाल को हराम कर लेता है, हराम को अपने ऊपर हलाल कर लेता है, और वो समझता है कि मैं बड़ा अकलमंद हूं, मताउन कलील, झूठ बोलते हैं बाज लोग और तिजारत करते हैं, माल को बेचते हैं, धोखा करते हैं, मिलावट कर देते हैं, झूठ बोलकर, कैसे कपड़ा था खराब, थान जो था खराब, कपड़े का हिस्सा अंदर कर दिया और ठीक अच्छा ऊपर कर दिया, अब लोग उसको खरीद कर ले गए। अब बजाहिर तो उसने उसका ठीक कपड़ा $10 वाला था, लेकिन उसने 30 में पूरा थान बेच दिया जो खराब भी था, वो बड़ा अकलमंद बना, लेकिन बताऊं कलील, बहुत थोड़ा फायदा है, कितने दिन वो मजे उठाएगा? और याद रखिएगा, हराम माल से अल्लाह बरकत उठा लेता है, हराम माल में बरकत नहीं होती, और अगर हलाल माल के अंदर हराम माल मिक्स हो जाए तो उससे भी बरकत छीन ली जाती है। जिस घर के अंदर हराम माल शामिल हो जाता है उस घर में जो है वो घर बरकतों से महरूम हो जाता है, रहमतों से महरूम हो जाता है। और आप देखें, हलाल रोजी थोड़ी भी हो ना, लेकिन उसके अंदर बड़ी बरकत होती है, और अब हराम माल है और बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जिस जिन राहों से आता है उन्हीं रास्तों चले जाता है, पता ही नहीं चलता किधर से आया और किधर चला गया। और लूटते लोगों को आपने देखा होगा, रोते देखा होगा, डूबते देखा होगा, और जो क्या कहते हैं ये बैंकरप्सी वो दायर करते देखा होगा, गवर्नमेंट ने आकर उनके घरों के बाहर ताले लगाए, उनकी दुकानों के बाहर ताले लगाए, तो बरकत नहीं रहती चीजों के अंदर, इंसान सोचता है चलो ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो इंसान पीछे होता चला जाता है। एक औरत खुद कहती है कि हमने जो है वो हराम जो है वो हमारे घर में आने लगा और उसके बाद हमारा घर बिल्कुल ही कोई बीमार हो गया, ऐसी बीमारी के सारी रकम उस पे खर्च, घर भी हमारा बिक गया, तालीम छूट गई, घर के अंदर बीमारी गुर्बत फाका जिंदगी जो थी ना उसने ऐसे लगता था बसेरा कर लिया। और वो कहती है कि मेरा जितना भी मैं सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हमने हलाल पर कनात करने की बजाय ना हराम जो थी ना उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, तो जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। तो दुनिया में भी अजाब है और वो क्या है कि सुकून खत्म हो जाए, बेचैनी, परेशानी, बीमारियां, तकलीफें, और आखिरत में तो है ही कि दर्दनाक अजाब।